बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 3 फरवरी दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकसभा व विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने का सुझाव देते हुए कहा, बार बार चुनाव होने से विकास की रफ्तार पर पड़ता है असर। राष्ट्रपति ने एक साथ चुनाव करवाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एक समझौते के प्रयास पर बल दिया। सवाल ये है कि क्या लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए, कितना व्यवहारिक है एक साथ चुनाव करवाना और क्या ऐसा करने से वाकई कोई फायदा होगा। आज बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर हिस्सा ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिका नंद सहाय। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिला 217 रन का रनों का लक्ष्य 38 ओवरों और 5 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत ने चौथी बार ये वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले साल 2000, 2008 और 2012 में ये खिताब भारत के नाम रहा था। पुलिस का कहना है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शुक्रवार को 2 कश्मीरी छात्रों पर हुए हमले के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य हमलावरों की भी पहचान कर ली गई है। खबरों के मुताबिक शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और लाठियों से पिटाई कर दी। इटली में पुलिस ने कहा है कि माशिराता शहर में गाड़ी से गोली चलाकर भागने की घटनाओं के सिलसिले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि कई लोग इन घटनाओं में जख्मी हुए हैं और एक की हालत गंभीर है। चीनी सरकार ने अमेरिका पर लातिन अमेरिका के प्रति असम्मानजनक रुख अपनाने का आरोप लगाया है। चीन की यह प्रतिक्रिया अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने चीन और रूस को लातिन अमेरिका के नए साम्राज्यवादी करार दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लातिन अमेरिका के साथ उनका देश बराबरी का सहयोग कर रहा है और इससे अन्य देशों का हित प्रभावित नहीं होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने लातिन अमेरिका की यात्रा के दौरान मेक्सिको को सलाह दी कि वो अपने यहां जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रूस के संभावित दखल से बचे। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में हुए कई चुनावों में रूस के हस्तक्षेप के सबूत मिलते हैं। यूरोपीय देशों से भी हमें यही सुनने को मिलता है। मेक्सिको को मेरी सलाह है कि ध्यान दें, देखें कि क्या हो रहा है। ये थे अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने नेशनल एयरलाइन और इससे जुड़ी सेवाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। एक बयान में कहा गया है कि 5 सदस्यों का आयोग श्रीलंकन एयरलाइंस के लेन देन और एमिरेट्स एयरलाइन के साथ प्रबंधन समझौते को खत्म करने के विवादित फैसले की जांच करेगा। जिस समय सरकार ने 2008 में इस समझौते को खत्म किया था, श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के रिश्तेदार को एयरलाइन का प्रभार सौंपा गया था। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में शीत ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले सैन्य परेड करने की अपनी योजना का बचाव किया है। सरकारी अखबार में कहा गया है कि परेड से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये उत्तरी कोरिया के सेना की वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित की जा रही है। पिछले 40 साल से उत्तर कोरिया अप्रैल में सैन्य वर्षगांठ मनाता रहा है। दक्षिण कोरिया ने इस कदम को गलत बताया है। सोल की बुसान यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर रॉबर्ट केली कहते हैं, ओलंपिक के कारण उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संवाद हो रहा है। उत्तर कोरिया कड़ाई से पेश आ रहा है और ऐसी बातों की मांग कर रहा है जो दक्षिण कोरिया के लिए मुश्किल हैं। खेलों से ठीक पहले मिलिट्री परेड का मकसद भी यही है, अपनी तरफ ध्यान खींचना। ये थे सोल की बुसान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी गजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइली सेना ने कहा कि दक्षिणी इसराइल में रॉकेट दागे जाने के जवाब में ये कार्रवाई की गई। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमास के ठिकाने पर दो सैन्य ढांचे थे। किसी भी तरफ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसराइली सेना ने कहा है कि गजा पट्टी में हिंसा के लिए हमास ही जिम्मेदार है। एक महिला कुर्द विद्रोही के विकृत शव का वीडियो सामने आने के बाद उत्तरी सीरिया के कुर्दों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुर्की के साथ मिले हुए सीरियाई विद्रोहियों ने हत्या करके इस शव का वीडियो बनाया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। इससे पहले कि आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, चर्चा उस खबर की जो कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशियां लेकर आई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने चौथी बार ये वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले साल 2000, 2008, 2012 में भी ये खिताब भारत ने अपने नाम किया था। किस तरह से भारत को ये जीत मिली और किसके बल्ले ने चमक बिखेरी, सब कुछ सुनिए आदेश कुमार गुप्त से और उसके बाद बीबीसी इंडिया बोल।
World Cup, New Zealand 2018, and the celebrations will go on for a long, long time tonight. They've been outstanding, and the future stars of Indian cricket have arrived in style.
आज भारत ने न्यूजीलैंड में खेले गए अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। भारत के सामने जीत के लिए 217 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज मनजोत कालरा के नाबाद 101 और विकेटकीपर बल्लेबाज आरविक देसाई के नाबाद 47 रनों की मदद से 38.5 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उसकी पूरी पारी 47.2 ओवर में ही 216 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मर्लो ने 76 और परम उप्पल ने 34 रन बनाए। जीत की खबर जैसे ही फैली, वैसे ही शतकीय पारी खेलने वाले दिल्ली के मनजोत कालरा के घर ढोल बजने लगे और उनके माता पिता गर्व के पलों में डूब गए।
मुझे भरोसा था वो जीतेगा।
ऐसा ही करता रहेगा और भारत के लिए वो एक गर्व है, तो आगे आने वाले टाइम में वो एक बहुत अच्छा प्लेयर भारत के लिए सिद्ध होगा।
मनजोत कालरा ने इस फाइनल मुकाबले में अपना शतक बेधड़क बेखौफ खेलते हुए केवल 102 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से पूरा किया।
And he gets it. The big moment has come for Manjot Kalra. The final of the under 19 World Cup and he delivers with 100 in style.
वैसे मनजोत कालरा ने पूर्व मैच में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ 86 रन बनाए थे, लेकिन 86 रनों की बड़ी पारी खेलने के बावजूद उनके कोच संजय भारद्वाज ने समझाते हुए उन्हें कहा था,
86 पे जब वो आउट हुआ तो मैंने उसको यही समझाया था, अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा, यानी जो एक मील पत्थर है 100 रन का वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा।
इस अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के कोच भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ हैं और न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले उनका मानना था कि कोई एक खिलाड़ी नहीं, टीम का हर खिलाड़ी महत्वपूर्ण है।
जो हमारी पूरी टीम है, जो स्क्वाड है 15 लोगों की, उसमें सब अच्छे लड़के हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं और उनमें से सब लड़कों के पास पोटेंशियल एबिलिटी है कि आगे जाके अपने स्टेट्स के लिए और इंडिया के लिए भी अच्छा खेलें।
महत्वपूर्ण हर खिलाड़ी कोच राहुल द्रविड़ की नजर में, लेकिन कप्तानी का भार संभालने वाले पृथ्वी शॉ ने भी खुद आगे बढ़कर दमदार खेल दिखाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप मैच में 94, पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ नाबाद 57, बांग्लादेश के खिलाफ 40 और पाकिस्तान के खिलाफ 41 रन बनाए। उन्हें अपने हर खिलाड़ी पर भरोसा था।
एज अ कैप्टन मेरा सोच ये है कि टीम को पूरा साथ में लेके चलूंगा, एक अच्छा यूनिटी है टीम में, क्वालिटी प्लेयर्स है, बहुत ट्रस्ट है मेरे को अपने टीम पर और सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मालूम है। मोस्टली सब लोग लिस्ट ए खेले या रणजी ट्रॉफी खेले, यही सोच रहा हूँ अभी वर्ल्ड कप जीतना है, ज्यादा कुछ माइंड में नहीं है, जैसे ही गेम बाय गेम होंगे प्रोसेस के साथ चलूंगा।
पूरे टूर्नामेंट में भारत अजय रहा, लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल साबित हुआ। जीत के लिए 273 रनों के जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम महज 69 रन बना सकी, तो पाकिस्तान के कोच पूर्व टेस्ट खिलाड़ी नदीम खान ने इसका कारण कम अनुभव माना।
मेरे ख्याल से जो मेन रीजन है वो प्रेशर था, जो बच्चे सस्टेन नहीं कर सके उस प्रेशर को, क्योंकि मैच टेम्परामेंट की कमी है और मैचेस हम बहुत कम खेलते हैं, ये बच्चे इन्होंने बहुत कम मैचेस एक साथ मिलके खेले हैं, जितने ज्यादा ये मैचेस खेलेंगे मैच टेम्परामेंट इनके अंदर आएगा, प्रेशर को सस्टेन करने की आदत होगी तो यकीनन बेहतरी आएगी।
खैर जो भी हो, भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसे साल 2012, साल 2008 और साल 2004 में अपने नाम किया था। आज फाइनल में हारने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इसे 3 बार जीता है।
तो भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब आज का बीबीसी इंडिया बोल।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
तो बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विषय एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि क्या लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए, कितना व्यवहारिक है और क्या ऐसा करने से कोई फायदा होगा। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिका नंद सहाय। टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, नंबर दोहरा देता हूं 1811-7000 और 1811-7001 पर। बहुत सारी फेसबुक टिप्पणियां भी हैं और तमाम श्रोता हमें लगातार फोन भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि भारत में जब भारत आज़ाद हो गया तो कब तक, अंबिकानंद जी, कब तक एक साथ चुनाव होते रहे, ये जानना जरूरी है। और ये क्रम टूटा तो कैसे टूटा, और आज अगर चर्चा हो रही है तो क्यों हो रही है?
देखिए, ऐतिहासिक परिवेश समझना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के बारे में एक परम सच्चाई है,
हाँ,
कि हम लाख चाहें कि वन नेशन, वन पॉलिटिक्स, वन टैक्स होता रहे, लेकिन ये विविधताओं भरा देश है। इसमें ये एक ज्योग्राफिकल सच्चाई है, फिजिकल सच्चाई है और राजनैतिक सच्चाई भी है
जी।
अब देखिए, आप जब भारत आज़ाद हुआ तो 52 से लेकर 67 तक एक साथ चुनाव होते रहे,
लोकसभा और राज्यसभा।
जी जी,
विधानसभा।
देश नया नया आज़ाद बन हुआ था और संविधान निर्माताओं को ये अच्छी तरह मालूम था, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑप्ट किया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं आया हिंदुस्तान में, नहीं आया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि ये विविधताओं में एकता, अनेकता में एकता वाला देश है। अगर आप चाहेंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए, केंद्र बहुत मजबूत हो जाए, तो ये लंबा चलने वाला नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अपने राजनीतिक शक्ति के चरम पे थे, 52 से 67 तक, 64 में उनका देहांत हो गया, उसके बाद इंदिरा युग शुरू होता है। तो जब अपने रियल स्वरूप में भारत आता है तो फेडरल हिंदुस्तान उभर कर सामने आता है।
संघीय ढांचा
जी, संघीय ढांचा वो सामने आया।
तो ये टूटा कैसे क्रम?
ये टूटा इसलिए कि कांग्रेस अकेली पार्टी थी जो मजबूत थी और वन पार्टी गवर्नमेंट चलता रहा लगातार। जब कांग्रेस की पकड़ थोड़ी ढीली हुई तो क्षेत्रीय दल मजबूत हुए, हाँ। और क्षेत्रीय दल का मजबूत होना कोई अच्छी कोई बुरी बात नहीं है, ये भारत का स्वरूप है। और जब कांग्रेस कमजोर हुआ, क्षेत्रीय दल मजबूत हुए, तो रियल फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स संविधान की और देश की राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, सब सामने आई, सब सामने आई।
धारा 356 का कितना बड़ा योगदान है इसको, इसके लिहाज से
बहुत,
जब राज्यों की सरकारें बर्खास्त होने लगी।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जब केंद्र बहुत मजबूत हो जाता है और वो अपनी चौधराहट पूरे देश पे लादता है और मन माफिक सरकारें चाहता है राज्यों में भी हो, वहाँ के जनमानस के खिलाफ, तो धारा 356 लागू हुआ कांग्रेस के जमाने, सबसे पहले केरला में
राष्ट्रपति शासन
लगा दिया नंबूद्रीपाद के समय में, तो बहुत विरोध हुआ इस बात का। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में क्या किया, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, कुछ इसी किस्म की राजनीति,
मतलब कुल मिलाकर हम श्रोताओं को भी शामिल करेंगे। संक्षेप में कहानी यह है कि जब राज्य सरकारें बर्खास्त होने लगी तो फिर वो टाइमिंग मैच जो है, टाइम जो है वो मिसमैच हो गया और केंद्र में सत्ता दूसरी रही और फिर राज्यों में दूसरी सत्ताएं आने लगी और तब ये समीकरण बिगड़ने लगा। श्रोता को शामिल करेंगे यहां पर कार्यक्रम में, और हमारी कोशिश है कि पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी भी कार्यक्रम में शामिल हो सके, उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। जी, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
नमस्कार सर, मैं भजनलाल बिश्नोई बाड़मेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
भजनलाल जी, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये तर्क कितना मजबूत है?
सर, ये तर्क एकदम मजबूत है, इससे आर्थिक और समय दोनों की बचत होगी। क्योंकि सर, मैं अभी विद्यार्थी हूँ, कॉलेज विद्यार्थी हूँ, और मैंने स्कूलों समय में देखा है कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो कई कई दिन राज्यों के जो चुनाव होते थे विधानसभा उनमें और जो लोकसभा के चुनाव होते थे उनमें अपनी ड्यूटी देते थे, और जितने भी वाहन होते थे लगभग उनको कोऑर्डिनेटर के रूप में, मतलब EVM मशीनों के रूप में साथ में लेकर के भेज दिए जाते थे अलग अलग क्षेत्रों में। इससे क्या होता था, उनका सरकार का आर्थिक नुकसान भी अलग अलग टाइम में होता था और लोगों का भी समय इसमें ज्यादा था, लोग सोचते थे परिणाम का इंतजार करते थे कई लोग, और कई लोग जो राजनीतिक देशी लोग हैं जो राजनीति मतलब एक तरह की रुचि दिखाते हैं वो लोग भी, उनका भी समय व्यर्थ होता था। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये देश के हित में ही,
मतलब राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल और उसके बाद मतलब जो जो एक तस्वीर जो सामने आएगी उसकी बात कर रहे थे। एक और श्रोता को मैं यहीं पर कार्यक्रम में जगह देना चाहूंगा। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? हेलो,
हाँ जी
जी, नाम बताइए कहां से बोल रहे हैं?
मैं कमल बोल रहा हूं, कोटा राजस्थान से।
कमल जी, राजस्थान से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोनों श्रोता आज हमारे राजस्थान के हैं, बहुत सक्रिय और जागरूक श्रोता हैं आप। आपको क्या लगता है, क्या राय रखेंगे आप?
अगर मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा होगा ना, जैसे अब केंद्र और राज्य में एक साथ चुनाव करवाए तो कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, कुछ केंद्रीय मुद्दे होते हैं, तो क्या जनता समझ नहीं पाती? जैसे राजस्थान में देख लो, जैसे अगर एक साथ चुनाव होता है यहाँ, तो मैं केंद्र के काम को देखते हुए मतलब राज्य को भी वोट दे दूंगा, तो जनता इस चक्कर में कुछ काम मतलब जो काम नहीं हुए फिर भी जीत जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, तो एक तो ये है। और मुझे नहीं लगता कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसके अलावा भी और बहुत से काम होते हैं करने के लिए गवर्नमेंट के पास। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि गुमराह करने का एक प्रोपेगेंडा है, मुझे ऐसा लगता है।
मतलब राज्यों और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए केंद्र के?
मेरे ख्याल से जैसा चल रहा है फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं, पर ठीक है, बट ये अभी करना मुझे अच्छा नहीं लगता सर।
अभी करना अच्छा नहीं लगता, इनकी राय हमने सुनी। दो चीजें सामने आई, दो श्रोता एक पक्ष में बात कर रहे थे और दूसरे विपक्ष में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम जरा मुद्दे की बात करते हैं, जरा राजनीति गणित को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसा संभव है और राज्य विधानसभा चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ होने लगे, तो क्या जो जिन जिन राज्यों के चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं, जहां नई नई सरकारें अभी आई हैं, क्या ये 2019 में सरकारें बर्खास्त होंगी?
यही तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है।
हाँ, ये व्यवहारिक समस्या है,
ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ये सोचना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और एक बात मैं बता दूं कि इस एक लंबी चर्चा चली फाइनली के केशवानंद भारती केस में, 13 जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक जजमेंट दिया और ये कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, इसको बदला नहीं जा सकता है, नहीं बदल सकते
हैं। नहीं, इसमें तो, इसमें इसमें तो उसकी बात हो रही ना कि दोनों की टाइमिंग एक कर दीजिए।
तो टाइमिंग
भाई, राज्य की मशीनरी बेचारे जो शिक्षक हैं वो हर जगह जाके चुनाव संपन्न कराते हैं, फिर साल में 3-3 बार आप चुनाव संपन्न करा रहे हैं।
अभी आपने राजस्थान से दूसरे श्रोता को नहीं सुना?
हाँ,
देखिए विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और केंद्र सरकार के मुद्दे अलग होते हैं, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव होता है। और जो श्रोता बोल रहे थे मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूँ कि इनजस्टिस हो जाएगी। मान लीजिए राज्य सरकार का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा और हमको उसके खिलाफ वोट देना है, लेकिन अगर केंद्र में बहुत मजबूत नेतृत्व है तो उस बहाव में हम बह जाते हैं।
हाँ।
और दोनों जगह एक ही, जैसे 52 से 67 तक हुआ,
हवा चली, लहर चली, तो पता चला लहर में पूरे के पूरे सारे राज्य साफ हो गए।
तो वो खतरा है, और मैं नहीं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन एक साथ करना न तो न्यायोचित है और न उचित है। जी,
मतलब न्यायोचित नहीं है। एक टिप्पणी है फेसबुक पर लेना चाहेंगे, राजेश कुमावत है, अगर जनता का पैसा बचाने की दृष्टि से ये किया जा रहा है तो फिर उपचुनाव भी बंद कर देने चाहिए। एमपी एमएलए को जो सुविधाएं मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती है, ये भी बंद कर देने चाहिए, पैसा बचाना है अगर तो। और अभी कल ही जो है सबकी तनख्वाहें बढ़ गई।
पैसे का परवाह किसको है? पैसे का परवाह सरकारों को, माफ करिएगा मेरे कड़े शब्दों को, ये 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 तो सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है।
नौकरी पेशा जो है वो टैक्स देता रहेगा और नेता अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते रहेंगे।
राष्ट्रपति जी का भी बढ़ जाता है, सांसदों का बढ़ जाता है, जजों का भी बढ़ जाता है, ठीक है, और पैसे की परवाह की भी बात होती है। और चुनाव में बहुत खर्च, चुनाव में जो खर्च, यहाँ पे एक मैं महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगा कि देखिए चुनाव में खर्च जो रियल होता है उसकी चर्चा ही नहीं होती है।
नहीं, वो तो
क्योंकि वो शर्मनाक लेवल तक है। एक विधानसभा के कैंडिडेट को आज के दिन में करोड़ों रुपया खर्च होता है,
जबकि पेपर पर नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई है वो करोड़ों खर्च होता है। और आप चुनाव दोनों को साथ कराएंगे तो क्या खर्च कम हो जाएगा?
जो रियल खर्च, जो पैसा बहता है वो तो कम हो जाएगा ना?
नहीं, कैसे कम हो जाएगा
भाई, एक ही बार बहा लो,
भाई एक साथ आप करा लेंगे, लेकिन उसके बैलेट पेपर अलग छपेंगे या मशीनें लगेंगी उतनी,
प्रचार तो एक हो जाएगा ना।
हाँ, प्रचार एक हो जाएगा, यहीं पे प्रोपेगेंडा का खेल सामने आता है। हाँ, और ये सुनियोजित ढंग से इस बात को, क्योंकि क्या है, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की भी भारी कमजोरी
और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये चर्चा लंबे समय से चली, पहले भी चलती रही,
चल रही है। देखिए, मैं फिर उसी सच्चाई पे लौटूंगा जो पहले कहा, विविधता भरा देश, यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण है। चूंकि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को अमूमन आजकल पटखनी देते हैं, इसीलिए ना तो ये बीजेपी के इंटरेस्ट में है और ना कांग्रेस के इंटरेस्ट में अलग अलग चुनाव, दोनों ये अंदर से चाहते हैं।
हाँ।
जब तक कांग्रेस की चौधराहट इस देश में चली 67 तक, तब तक एक साथ चुनाव होते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी कमोबेश उस पोजीशन में है तो वो अपना चौधराहट करना चाहती है एट द एक्सपेंस ऑफ क्षेत्रीय दल।
बिल्कुल, कार्यक्रम में यहाँ पर श्रोताओं को जगह देते हैं, नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप।
सर, जितेंद्र शर्मा, ग्राम कोहरवास, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
मध्य प्रदेश से एक कॉल आया है हमारे पास, जितेंद्र।
जी सर, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि भारत की पॉलिटिक्स जो इसमें जो बयान आया हुआ है प्रेसिडेंट जी का, तो इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो चुकी है कि ना तो कांग्रेस को फिक्र है जनता की, ना बीजेपी को फिक्र है। तो जो लोग हैं इनसे दोनों पार्टियों से ही उब गए हैं, तो मतलब उनका कोई भी मतलब नहीं है इनका, जो आप जो बयान करते हैं सिर्फ एक पब्लिसिटी अपनी करने के लिए, अपने आप को एक अच्छा नेता लीडर शो करने के लिए इस तरीके के बयान दे देते हैं, लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एक और श्रोता को यहीं पर हम जगह देंगे। जी, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं। जितेंद्र की बात हम सुन चुके हैं।
हेलो
जी, नाम बताएं।
सर, हमारा नाम है विजय कुमार यादव, हम बिहार से बोल रहे हैं।
विजय कुमार जी, बिहार से कार्यक्रम में आप शामिल हैं, आपको क्या लगता है कि अगर बिहार में तो अभी कुछ समय पहले ही चुनाव हुए तो साथ साथ चुनाव हो जाने चाहिए?
सर, साथ साथ चुनाव होने से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा सर।
कैसे?
यानी कि सर, जो राजनीतिक दल वाले हैं तो पैसे जब पानी के जैसे बढ़ाते हैं, तो सारा खजाना जो भी उनका जो है खजाना जो है, देखिए बीजेपी का है, कांग्रेस का बहुत बड़ा खजाना है, तो सारा पैसा जनता में बहवा देंगे तो सर फिर तो जनता पर ही बोझ आएगा सर।
हाँ जी भाई, जनता का पैसा जनता में बहाएंगे, बोझ भी जनता पर ही आएगा। दो टिप्पणियां हैं, चंद्रप्रकाश तिवारी हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल सही प्लानिंग है, बार बार दंगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव से पहले जिस तरह के माहौल बनाए जाते हैं, तो एक तर्क इनका ये है। विनोद कोहली हैं, एक साथ चुनाव होने चाहिए, टाइम वेस्ट ना हो, और एक लॉजिक ये दे रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान भी नहीं होगा, फिर उसके दो साल बाद केंद्र के चुनाव करा देने चाहिए, और साथ साथ नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एक साथ सारे करवा दे, किसी का कोई नुकसान नहीं। इन्होंने व्यंग किया है, कहा कि सिर्फ आप विधानसभा की बात क्यों कर रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, सभासद, नगर निगम, पंचायत चुनाव सब एक साथ करा दीजिए, सारा पैसा बच जाएगा।
ये व्यंग है।
जी हाँ, व्यंग है।
और देखिए, इसमें जितने श्रोता भी बिहार वाले बोल रहे थे, मध्य प्रदेश वाले बोल रहे थे, देखिए ये राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति रोष झलकता है। और आप दक्षिण भारत जाइए, पूर्वी भारत जाइए, ये रोष आपको और ज़्यादा स्पष्ट नज़र आता है। मैं फिर कहता हूँ कि बहुत इम्प्रैक्टिकल है, ये तो कैंपेन चला रहे हैं आज की नेतृत्व कि एक साथ दोनों चुनाव हो, लेकिन कैसे करेंगे ये कोई खुलासा नहीं कर रहा है।
अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं,
जैसे गुजरात का आपने बड़ा खूबसूरत एग्जांपल दिया, अभी चुनाव हुए
हैं, हिमाचल का चुनाव हुआ।
तो हुआ,
अभी नॉर्थ ईस्ट में होने वाले
लोकसभा के साथ उन राज्यों का भी करा दीजिए, संभव है कि यही लोग,
ये तो व्यावहारिक दिक्कत है,
व्यावहारिक दिक्कत है। और मैं फिर कहता हूं, कथनी और करनी में फर्क है, ये कह रहे हैं लेकिन क्या करेंगे ये खुद, मुझे तो इसमें शक है।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई चुनाव एक साथ होंगे, तो उसका फायदा क्या है?
मेरे ख्याल से देखिए,
ये मैं बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं,
हाइपोथेटिकल जवाब उसका मैं यही देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जो संघीय ढांचा है और इसकी विविधता है, उसकी आत्मा में चोट करना होगा।
लेकिन यही ढांचा तो पहले भी था, 67 से पहले ना,
पहले भी था।
हाँ। तो लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, आज की अलग है।
मैंने कहा ना, उस वक्त केंद्र एक ही पार्टी की सत्ता थी हर जगह, हाँ। पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हाँ। और वो अपनी चौधराहट चलाते थे
जी।
लेकिन जैसे ये भारत अपने मूल स्वरूप पे आता है तो हर राज्य हर क्षेत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है, वहाँ की लोकल एस्पिरेशंस। देखिए इस देश में भाषा तक तो एक है नहीं, संस्कृति अलग है, हर 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 चीज़ बदलता है। तो ऐसे में ये करना ना तो संभव है और मैं नहीं समझता हूँ। ये देश प्रजातंत्र ज़्यादा लंबा ज़्यादा सक्सेसफुल चलेगा अगर इसको अपने स्वरूप में चलने दिया जाए
और जबरन फूलने दिया जाए।
जी जी
जी, श्रोताओं को जगह देते हैं। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं जरा।
हेलो
जी, नाम बताएं।
राजवली यादव मैं बोल रहा हूँ, गोंडा से।
अच्छा जी, उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व आ गया आज हमारे कार्यक्रम में गोंडा से। जी राजवली यादव जी।
जी सर जी, बहुत प्रसन्न हुआ मैं फोन मिला, काफी दिनों से प्रयास कर रहा था।
चलिए समय कम है, अपनी बात रखें।
हाँ, मेरा मानना ये है सर जी कि ये दोनों चुनाव एक साथ हिंदुस्तान में नहीं होने चाहिए।
क्यों नहीं होने चाहिए?
इसलिए नहीं होने चाहिए कि जो हिंदुस्तान की विविधता है,
हाँ,
जो हिंदुस्तान के अलग प्रदेशों के अलग अलग मुद्दे हैं,
हाँ,
उन मुद्दों पर ही तो चुनाव होता है सर।
अंबिकानंद जी भी तो यही बात कह रहे हैं, आप कार्यक्रम सुन रहे
हैं। एक सेकंड और लूंगा सर, मैं अंबिकानंद सहाय जी से ये जानना चाहता हूँ,
हाँ,
कि जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब चौधराहट थी तो कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई, देखो नरेंद्र मोदी जी को ऐसा क्या मतलब तुरंत सूझ गया कि तुरंत जो है ये चुनाव एक साथ होने चाहिए। इस पे अंबिकानंद सहाय जी की टिप्पणी
हाजिर है।
यादव जी, इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं ऐतिहासिक। इस बात की शुरुआत बंच ऑफ थॉट नामक पुस्तक में आदरणीय परम आदरणीय गोलवलकर जी ने शुरू किया, वन नेशन वन इलेक्शन और इसकी बातें। उसके बाद आडवाणी जी ने इसको पिकअप किया और 2003 में वो कहना शुरू किए। अभी 4 साल पहले से मोदी जी कह रहे हैं, 4 दिन पहले राष्ट्रपति जी ने कहा और अब तो करीब करीब पूरी कैबिनेट ये बात कह रही है।
लेकिन वो तो संभव नहीं है ना, व्यवहारिक नहीं है ना।
लेकिन व्यवहारिक है नहीं। और मैं फिर कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, देखिए एक मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा,
हाँ,
कि जब आप हिंदी थोपने की कोशिश करते हैं तो हिंदी का विरोध होता है। आप छोड़ दीजिए, हिंदी तो ऐसे ही फैल रहा है। मैं अभी केरला गया था, हिंदी में बात कर रहा था, सब हिंदी में जवाब दे रहे थे।
तो थोपिए नहीं,
की राजनीति नहीं।
एक और श्रोता को बहुत संक्षेप में जगह देना चाहूंगा, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं।
गुप्ता राजन सर, मोहनगंज पूरे कुशई प्रतापगढ़ यूपी।
जी अच्छा, उत्तर प्रदेश से। जी
सर, ये जो मोदी जी ये चाल चल रहे हैं ठीक नहीं है सर इस देश के लिए।
चाल आप क्यों कह रहे हैं
सर? ये क्योंकि लोगों को ध्यान भटकाने का तरीका है इस समय, जो एक लहर चल रही हिंदुइज्म की,
हाँ,
तो सर एक तरीका है सर, जो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं उसको दूर करें, एक देश एक शिक्षा कर दे पूरे देश में।
रिलेवेंट बात कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इनकी बजाय मुद्दे भटकाने की कोशिश जो हमारे श्रोता ये कह रहे हैं
जी,
और इसकी बजाय कुछ सकारात्मक कदम उठा लें।
बहुत सुंदर बात इन्होंने कहा, बहुत सुंदर। आप शिक्षा का तो एकीकरण करिए और गरीब और अमीर एक खर्च पे पढ़ सके, यही तो कर दीजिए। तो
वहां करने की जरूरत है।
जी जी जी, एक चुनाव करा देने से और बीमारी थोड़ी ना समाप्त हो जाएगी, मैं भी यही कह रहा हूँ।
हाँ,
बहुत सुंदर सवाल था श्रोता का।
जी तो जी, ये जो चर्चा है ये तो एक ऐसी जो ढांचे पर भी सवाल उठाती है कि संघीय ढांचे में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, व्यवहारिक दिक्कतें कैसे हैं, कुल मिलाकर आने वाले भविष्य में क्या आपको लगता है ऐसा कभी संभव है?
मुझे नहीं लगता है।
और तो ये क्या सिर्फ सिद्धांत और सिर्फ चर्चा के लिए बात है, ये छोड़ दिया गया है सिर्फ?
ये इसलिए कि जो आज के सत्ताधारी लोगों की,
हाँ,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसमें ये कही गई है,
हाँ,
तो ये होम क्राउड के लिए ये कह रहे हैं संभव
मतलब,
है नहीं।
हाँ, संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिकानंद जी। और चलते चलते आपको बता दें कि हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने आपसे इस बात के लिए माफी मांगी है कि भारत ने साल 2004 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, जबकि भारत ने इसकी जगह साल 2000 में इसे जीता था। कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबिकानंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहनलाल शर्मा को शाकिर आलम के साथ विदा दें, नमस्कार।